ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है अशरीरी विदेही स्थिति। क्योंकि इस पुरुषार्थ का वर्तमान समय बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करो, तो तीव्र पुरुषार्थ करना मतलब अशरीर अवस्था में रहना, विधेयी अवस्था में रहना। क्योंकि इस अवस्था में जो रहता है निरंतर योग युक्त है, इस अवस्था में जो रहता है आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए हमारी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना अशरीरी अवस्था में हम रहते हैं, विधेयी अवस्था में रहते हैं, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की हम सेवा कर सकेंगे। इस अवस्था में रहने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, हमें सब कुछ अच्छा नजर आएगा, अपकारी पर भी उपकार कर सकेंगे, ग्लानी करने वालों को गले लगा सकेंगे, उसके लिए नफरत नहीं आएगी, घृणा नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगता है हर मुरली में बाबा आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बोलता है, क्योंकि आत्मा का पाठ जिसका पक्का होगा अशरीरी बनेगा, विधेयी बनेगा, लाश की अवस्था बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, शिव बाप समान। वास्तव में हम यहां आए ही हैं, इसलिए हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्यु का लक्ष्य। सत्यु का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, लक्ष्मी नारायण समान बनना, और संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिजरू बिंदुरू बनना। याद रखना, जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्यु का लक्ष्य उसकी परछाई है, उसके लिए अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। जो अशरीरी अवस्था में रहता है, निराकारी अवस्था में रहता है, उसका पद ऊंचा होगा, देवता बन ही जाएगा। क्योंकि इस अशरीरी अवस्था में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से, हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत होती है। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? हमें अशरीरी बनाने के लिए, आत्माभिमानी बनाने के लिए, विधेयी बनाने के लिए आए हैं। बाबा का मुख्य लक्ष्य यह है। ये सत्युग था, सत्युग का कलयुग क्यों बना? हम देह बहन में धीरे 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 आते गए, सत्युग था, कलयुग बन गया। अब इस कलयुग का सत्युग बनाना है, हमें क्या बनना पड़ेगा? ये अशरीरी विधेयी निराकारी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये मूल पुरुषार्थ है, और अंत में जो पेपर आएंगे, खान पान के पेपर, कर्मों के हिसाब किताब के पेपर, इविल सोल्स के पेपर, कई प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन तमाम पेपरों में पास होने के लिए यह अवस्था चाहिए। जो इस अवस्था में रहता है उसका सामना कर सकेगा। अगर यह अवस्था नहीं है, डर लगेगा, भय लगेगा, घबराएंगे, और अंत में हमारा घबरा करके, डर करके शरीर छूटेगा, तो सत्ययुग में कैसे जाएंगे। इसीलिए बाबा रोज इस पाठ को पक्का कराता है, ये हमारा फाउंडेशन है। आज हमारी दादियों ने इतनी अच्छी अवस्था बनाई, ब्रह्मा बाबा ने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने इस आत्मा का पाठ पक्का किया, अशरीरी विधेयी स्थिति का पाठ पक्का किया। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में इतने चटपटी बातें आती हैं, जो मूल जो अभ्यास है उसके तरफ हम किनारा करते और इसलिए सफल नहीं बनते। अगर इस माया के युद्ध में सफल बनना है, ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ चाहिए। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई, आखिर बाबा को आना पड़ा परम धाम से। और आ करके पहली बात क्या बताई, बच्चे तुम आत्मा हो। इसी एक लेसन से सब कुछ बदल जाता है। ये 20 का जो ज्ञान का विस्तार है, ये निराकारी अशरीरी विधेयी बनने के लिए लेसन है। चाहे ड्रामा का लेसन, कर्मों का लेसन, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सारा विस्तार का ज्ञान है अशरीरी बनने के लिए। अगर इतना विस्तार में हम ज्ञान में जाते हैं, लेकिन मेरी अवस्था नहीं है, ये ज्ञान को समझा ही नहीं, ज्ञान हमारे धारणा में नहीं है। जो बाबा के सुने हुए ज्ञान अथाह पॉइंट के पॉइंट स्वरूप बन जाता है, उसका स्वरूप बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली अशरीरी विधेयी बन जाता है। जो आचरण में लाता है, सुनने तक नहीं रखना लेकिन आचरण। अगर मेरी ये स्थिति नहीं है, मेरा ज्ञान केवल सुनने तक है, इसलिए इस स्थिति को हमें बनाना है। क्योंकि इस अवस्था में रहने से हमारे से कोई भी भूले नहीं होती, भूले नहीं होती। इतना ही नहीं, जो हमने जन्म जन्मांतर के भूले किए, विकर्म किए, इस अवस्था में टिकने से वो विकर्म भी कम होते जाते, विनाश होते जाते। क्योंकि इस अवस्था में रहने से बाबा ऑटोमेटिकली याद रहता है। जैसे कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, एक गीत है ना हमारा, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते, जो देह भान में हो रहता है उसको बाबा नजर नहीं आता। और आजकल का जो यहां का मिलन है बाबा का, मधुवन का, कौन सा मिलन है, अव्यक्त मिलन। बाबा अव्यक्त रूप में मधुवन में आते हैं, लेकिन उस आए हुए बाबा को देखने के लिए हमारी अवस्था भी अव्यक्त चाहिए, अशरीरी अवस्था चाहिए। जब अशरीरी होकर के देखेंगे, बाबा की मिलन की अनुभूति कर सकेंगे। इसीलिए इस पाठ को हमें पक्का करना है और इसी से हम बहुत काल के अभ्यास से अंत में भी पास हो सकेंगे। इस अवस्था में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जो सुख हमने पूरा कल्प में खाने से, देखने से जो प्राप्त नहीं किया, वो सुख इस अवस्था से मिलता है। और जब इस अवस्था में हम टिकते हैं, जब ये सुख मिलता है, अंदर से आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। जैसे कोई जलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहेगा नहीं नहीं अब जलेबी क्या, मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी अवस्था की अनुभूति की है, विधेय स्थिति की अनुभूति की है, उसको ये विकार, ये संस्कार, पुरानी दुनिया, ऑटोमेटिकली वैराग आएगा। अगर अभी भी मेरे पुराने संस्कार आकर्षित करते हैं, कोई विकार आकर्षित करता है, इसका मतलब मैंने वो जिलेबी की टेस्ट, ये अशरीरी विधेयी स्थिति की टेस्ट नहीं की है। इसलिए हमें इसी में खोए रहना है। हमारी दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसी तरह मैं कौन, मैं आत्मा, अशरीरी, विदेही, निरंतर, जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी क्या होता है, भूल जाता है, खुद की हमारी स्मृति विस्मृत हो जाते हैं, तो बाबा भी भूल जाता है। इसलिए बार बार ये लेसन को पक्का करना है। जो इस अवस्था में रहता है उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है, वाइब्रेशन पावरफुल चलते आते हैं। इसलिए हमें इस अवस्था में रहना है। इस अवस्था में रहने वाला उसका चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा, उसको कोई डर, भय, तनाव, टेंशन भी नहीं होगा। और जब हमारा खुशनुमा ऐसा चेहरा देखेंगे, बाबा की सेवा कर सकेंगे, लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। बाबा कई बार आजकल कहते हैं अपने चाल और चलन से सेवा करो, लेकिन कौन कर सकता है, जो अशरीरी अवस्था में है, विधेयी अवस्था में रहता है, जिसका भ्रुकुटी में निरंतर दीपक जागृत है। इसलिए इसी का हमें पुरुषार्थ करना है और इसी लक्ष्य तक पहुंचना है। आज कईयों के कई समस्याएं हैं। कई कहते हैं मेरा योगी नहीं लगता है, कई कहते हैं मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता, गुस्सा आता है। इन सब का कारण है देहबान। जो देहबान में है उसको गुस्सा आएगा, सहन शक्ति नहीं होगी। वास्तव में सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी का, विदेही स्थिति का, आत्मिक स्थिति का। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, अब जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी स्थिति का बीज बोया ही नहीं, विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ किया ही नहीं, आत्माभिमानी बना ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो उसके जीवन रूपी वृक्ष में धैर्यता, सहन शक्ति, शांति, एकाग्रता, ये फल कहां से लगेंगे। फलों का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है विधेयी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, निराकारी स्थिति का। और जो इस अवस्था में निरंतर रहता है ऐसी आत्मा एवरेडी है। आजकल बाबा कहते हैं अचानक कुछ भी होगा इसके लिए आप एवरेडी बनो। तो एवरेडी मतलब क्या, एवरेडी मतलब निरंतर अशरीरी विधेयी अवस्था में रहना। वो कभी भी जाने के लिए तैयार है, उसने सारा कुछ समेटा है। तीन प्रकार के आसन है, एक है भ्रुकुटी का आसन, दूसरा है बाबा के दिल तक तक आसन, और तीसरा है भविष्य की राजाई का आसन। जो भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रहता है वो बाबा के आसन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जो बाबा के आसन पर बैठता है उसको भविष्य का आसन, राजाई का आसन अपने आप मिल जाता है। तो भविष्य की अगर राजाई प्राप्त करनी है तो मुझे निरंतर भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहना है, अशरीरी विधेयी अवस्था में टिकना है। इसलिए बाबा रोज के मुरली में ये अशरीरी की ड्रिल करो, विधेयी स्थिति का अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझो, ये बाबा पाठ पक्का कराते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाई, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे फाउंडेशन में होता है। अब जिन्होंने कंजूसी की पैसा बचाने के चक्कर में और फाउंडेशन ढीला डाला डाल दिया और आंधी तूफान आएगी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ये अशरीरी का पाठ, विधेयी स्थिति का पाठ पक्का नहीं किया और सेवा करने में लगा हुआ है, औरों को सुनाने में लगा हुआ है, ज्ञान योग में लगा हुआ है, जब माया का आंधी तूफान आता है वो बिल्डिंग गिर जाती है। फिर कहते ये क्या हो गया, मैं फेल कैसा हुआ, क्योंकि मैंने फाउंडेशन पक्का नहीं किया है। और अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे। देवताओं की सारी संस्कृति इस अशरीरी आत्मिक स्थिति में है, इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ यह है, पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर, इस शरीर से निरंतर स्वयं को अलग अनुभव करना, यह पुरुषार्थ। क्या कहते हैं, आजकल मेरा पुरुषार्थ बहुत ढीला चल रहा है। तो पुरुषार्थ ढीला चल रहा है मतलब क्या, मैं आजकल देह भान में हूं, इसलिए मुझे सभी की कमी कमजोरियां दिखाई पड़ रहे हैं और इसलिए मेरे जीवन में समस्या और प्रॉब्लम है। इसलिए पुरुषार्थ करना अर्थात सदा इस अवस्था में रहना, अशरीरी विधेयी अवस्था में रहना, उसको निरंतर बाबा ही नजर आता है, जिधर भी देखो तू ही तू। जब हमारी ये अवस्था है, जैसे रावण के सामने जब सीता के सामने जब रावण आता है तो सीता क्या करते हैं, तिल्ली जला करके रख देती है, क्योंकि जब उसके पास तिल्ली होती है रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह आज हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण के राज्य में रहते हुए रावण से बचना है तो ये हमारी ब्रुकुटी में निरंतर तिल्ली जली रहे। अगर मेरी तिल्ली जली है तो रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी रूप में नहीं आ सकता। सबसे बड़ा विकार है देह भान। हम तो काम विकार पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे, क्रोध के पर कर रहे, लेकिन एक निकालो दूसरा आता है, वो निकालो तीसरा आता है। क्यों, हमने देह भान को खत्म नहीं किया। देह भान को मिटाएंगे तो बाकी सारे संस्कार अपने आप, बाकी विकार अपने आप भाग जाएंगे। देह भान विकारों का मुखिया है, सरदार है। इस मुखियाओं को मारेंगे तो बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है फिर जुड़ जाता है, राम परेशान हो गए। तो विभीषण आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, कोई 5 साल से कोई 10 साल से रावण के गले काटने में लगे, कभी काम का काटा 2-3 महीने के बाद फिर जुड़ गया, फिर काटा फिर जुड़ गया। क्यों, देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे विकारों के गले नहीं कटेंगे, युद्ध चलता ही रहेगा लास्ट तक। इसलिए मैं ये अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। इससे हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएंगे, सभी इंद्रियों को हम अपने वश कर सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे। लेकिन इस अवस्था में रहने के लिए हमें कुछ धारणाएं करनी है। अगर ये धारणा आपके जीवन में है तो आप अशरीरी विधेय की अनुभूति कर सकते हैं। ये तो मैं आपको महत्व गिना रहा था, ये अवस्था क्यों जरूरी है, लेकिन इस अवस्था की अनुभूति करने के लिए हम क्या क्या करना है। इस अवस्था की अगर हमें अनुभूति करनी है अशरीरी विदेह स्थिति की, तो सबसे पहली धारणा है हमें अपने संकल्प को समर्थ चलाना है, पॉजिटिव चलाना है, सकारात्मक चलाना है। ये अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति का आधार क्या है? संकल्प, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। मुझे लगता है अभी भी हमने बाबा से मिलन मनाया, शिवरात्रि मनाई, और बाबा ने कहा कि शिवरात्रि मनाने के लिए आए हो तो शिवरात्रि में क्या करते हैं, अक्का फूल चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते हैं, अक्का फूल भी चढ़ाते हैं। तो अक्का कौन सा फूल बाबा ने मांगा? वेरस संकल्प। इस वेरस संकल्प के अक्के फूल को चढ़ाओ। और मुझे लगता है इस सीजन की विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा बाबा ने संकल्प शक्ति के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया, क्योंकि मुख्य बाबा हमें अशरीर बनाना चाहता है, विधेयी बनाना चाहता है, लेकिन उसका आधार है यह संकल्प, जिसको बाबा ने नए वर्ष में कहा कि नया वर्ष मनाने के लिए आए हूं तो एक शब्द मुझे गिफ्ट देना। वो कौन सा शब्द? कारण। इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये कारणों का निवारण करो। और जो कारणों का निवारण करेगा, क्योंकि कारण लगाने से और ही दलदल में फंस जाते हैं, एक पांव निकालो दूसरा, वो निकालो तीसरा, और समस्या बढ़ती है। और तब हमारा संकल्प बचेंगे, समय का खजाना भी बचेगा, जिसको बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, संकल्प का खजाना बचाओ। और अभी बाबा ने शिवरात्रि में अक का फूल कौन सा? ये वेरस संकल्प के अक के फूल को चढ़ाओ बाबा के, क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो ध्येय भान में आता है। जितना आप कम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो ऑटोमेटिकली अशरीरी बनता है, ऑटोमेटिकली विधेयी अवस्था में रहता है, निराकारी स्थिति बनती है। इसलिए संकल्पों को बचाना। वर्तमान समय चाहे बाबा के बच्चे चाहे दुनिया वाले लोग, इसके ऊपर जो माया वार कर रहे हैं किस आधार से? संकल्प को निगेटिव बना रहे, और इसलिए विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आ रहे। दुनिया में एक शब्द यह है कि तनाव पैदा हुआ, तनाव, टेंशन। ये तनाव टेंशन क्या है? निगेटिव सोच। आज हमें बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा रिपीट हो रहे हैं, ये सारा इतना ज्ञान दिया है, तो भी हम कहते हैं ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जितना ये संकल्प चलाएंगे उतना ध्येय भान आएगा, अशरीरी स्थिति की, आत्मिक स्थिति की, विदेही स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जिसके संकल्प चलते हैं, मतलब कोई आया बात, इसका मतलब बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। बाबा के ऊपर भरोसा रखना, बाबा के ऊपर विश्वास रखना, अर्थात मन चुप। नहीं तो आज इतना पवित्रता का पालन किए हैं, अमृत वेला करते हैं, योग लगाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सारा दिन संकल्प चलाने से क्या होता है? जितना किया जमा हो, खत्म हो जाता है, जमा कुछ भी नहीं। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? मेरी भक्ति क्या भगवान तक नहीं पहुंच रहे? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। तो गुरुजी ने कहा तीन चार दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था तो वहां पांच छह युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, वहां से वहां कुएं में पानी भी है, पी के चले जाना। तो पांच छह युवा वहां कुएं के पास गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। फिर दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, दस बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए, पैसे चले गए। कुआ था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, हम लोग कहां हैं? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, बाल्टी अर्थात बुद्धि, मन है, रस्सा, मेहनत भी करते हैं, अमृत वाला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, मेहनत भी करें, लेकिन अगर मन रूपी बाल्टी को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, ना अशारीरिक अनुभव, ना विधेय अनुभव, ना शांति का, ना शक्ति का अनुभव। इसलिए अपने बाल्टी के छेद को बंद करना, और इसलिए बाबा ने अग का फूल चढ़ाने के लिए कहा है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। जो व्यर्थ सोचता है, योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहां उसका योग लगेगा। जब योग ही नहीं लगा, बुद्धि इधर उधर भटकी तो शरीरी विधेय कैसे बनेंगे। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाना, जितने हमारे समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प चलते हैं, उतनी हमारी आत्मिक स्थिति चलती है, और जितना कम से कम संकल्प, संकल्प को भी हमें बचाना है। इसके लिए कर्म गति को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ। और बाबा ने खास अभी वरदान दिया, कौन सा वरदान दिया? उड़ती कला भव, फरिश्ता भव। कौन उड़ सकता है? जो व्यर्थों से मुक्त है, क्योंकि हमारा ये भी लक्ष्य है, हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता मतलब हमें कोई पंख नहीं आने वाले, क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। अब जिन बच्चों में के पास डिग्री है उनको क्या लगती है? नौकरी लगते हैं। इसी तरह ये ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता हमारी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? देवता बनने के लिए। लेकिन देवता कब बनेंगे? ऊंच पद प्राप्त करेंगे, फरिश्ता। तो फरिश्ता बनना अर्थात हल्के रहना, और हल्के रहने का आधार है समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना, व्यर्थों से सदा मुक्त बनना। तो अशरीरी अवस्था को की अनुभूति करनी है, विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, हमारे संकल्प समर्थ चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। जिसके संकल्प व्यर्थ है, बाबा की मुरली भी याद, बाबा ने कहा ना, कई बच्चों को व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फिर पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या था? वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन क्या था? क्योंकि जहां व्यर्थ आई वहां ये ज्ञान की बातें याद नहीं रहेगी। इसलिए हमें पक्की धारणा करनी है, मुझे सदा पॉजिटिव रहना है, मुझे सदा सकारात्मक रहना है, और जितना सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे अशरीरी अवस्था की अनुभूति कर पाएंगे, विदेही स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि ये समय व्यर्थ सोचने का नहीं है, इस समय है समर्थ सोचने का। अब कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा वापिस आए, कहां जाएगा? जहां से निकला वही रहेगा। इसी तरह हमने डट करके पुरुषार्थ किया, अमृत वाला किया, मुरली सुनी, सेवा किया और सारा दिन निगेटिव सोचा, व्यर्थ सोचा, जितना दौड़े थे उतना वापिस। इसलिए अपने संकल्प पर ध्यान देना, कुछ भी बातें आ जाएं, मुझे क्या करना है, ड्रामा को याद करते हुए, कर्म गति को याद करते रहो, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो रहे हैं ये मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं ये कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए, इसलिए कोई भी किसी का दोस्त नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो संकल्प शक्ति को बचाना, और जितना संकल्प पॉजिटिव समर्थ चलते हैं हमारी अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति रहेगी। दूसरी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी अवस्था की अनुभूति करनी है, योग को बढ़ाना है, सिवाय योग से हम अशरीरी विधेयी की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि 8-10 दिन पहले बाबा की मुरली चली है, एक एक लाइन के पीछे मुझे याद करो याद करो। ये बाबा को याद करने से क्या होगा, हमारी अशरीरी आत्मिक स्थिति बनेगी, विधेयी अवस्था बनेगी। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करने से उसकी बैटरी, मोबाइल चार्ज नहीं होता उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, इसी तरह योग करना अर्थात अपनी बैटरी को चार्ज करना, और वो भी विधि से चार्ज करना। कम से कम वर्तमान समय अनुसार हमारा 2-3 घंटा बैठ करके योग चाहिए, और जब हम विधि से योग करते हैं तब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, सारा दिन हम अशरीरी विधेय स्थिति में रह सकते हैं। और योग का आधार क्या है, मन और बुद्धि, मन को हल्का रखना, बुद्धि को स्वच्छ रखना। और जितना हम योग लगाते हैं हमारी अशरीरी अवस्था विधेयी अवस्था, एक तो अमृत वाला का 1 घंटे का योग, क्लास के पहले आकर के 1/2 घंटे का योग, रोज की मुरली सुनना, इससे भी अगर सवेरे सवेरे ये भी हम इतना भी एक्यूरेट करते हैं तो सारा दिन हमारी अशरीरी विधेयी अवस्था रहेगी। अमृत वाला अच्छी तरह करना, साथ में क्लास के पहले आकर के 1/2 घंटे का योग और रोज की मुरली बाबा की सुनना विधि से, ये 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और सारा दिन हम विधेयी अवस्था में रहते हैं। फिर नुमा शाम का योग, इसलिए योग के चार्ट को हमें बढ़ाना है, और वो योग भी कैसा करना है, विधि से। अब कई तो बैठ तो जाते हैं लेकिन बैठ करके मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, अगर यथार्थ योग नहीं करेंगे वो विधेयी अवस्था नहीं बनेगी। इसलिए हमें यथार्थ योग के द्वारा, ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा अशरीरी स्थिति का अनुभव, बाबा के उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, बाबा हमें क्या से क्या बना रहे उसको याद करना, और जितना लगन में मगन में योग करेंगे हमारी बैटरी चार्ज होगी, इसी से सारा दिन हमारे मन का भटकना, बुद्धि के भटकना बंद हो जाएगा और अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे, क्योंकि इस अवस्था में रहने से ही हम कर्मयोगी बन सकते हैं। तो योग के द्वारा अशरीरी स्थिति की अनुभूति। तीसरी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी का विधेय स्थिति का अनुभव करना है उसके लिए पवित्रता की धारणा, जितना हम पवित्रता की धारणा पक्की करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, हम अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे पवित्रता। लेकिन आजकल के माया ने क्या किए हैं, पवित्रता को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन बनाए। बाबा ने तो कितने नियम बनाए हैं, नावेल्स नहीं पढ़ना, फिल्म नहीं देखना, कितने सारे नियम बनाए। लेकिन माया कहती अच्छा आप तो थिएटर में तो नहीं आ सकते क्योंकि बैज पहना हुआ है, सफेद ड्रेस पहना हुआ है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, तो ओम शांति बोले थिएटर में आते हैं। कोई बात नहीं कहते, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। अब हर एक का जेब क्या बना हुआ है, सिनेमा थिएटर। अगर थोड़ा भी गलती से कोई गलत हमारे अंदर चले गए, नजर गई, तो पवित्रता भंग। अगर पवित्रता भंग है वो निराकारी अशरीरी स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए पवित्रता के ऊपर हमें अटेंशन। पवित्रता क्यों जरूरी है, जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिए में केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, माचिस लगा उसके फ्लेम जलती रहती थी। अगर उस दिए के अंदर केरोसिन है तब माचिस लगाओ तो फ्लेम जलेगी, अगर केरोसिन नहीं है माचिस लगाते रहो पूरा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा माचिस का, तो भी दीपक नहीं जलेगा। इसी तरह योगी भी क्या है, अगर योग में बैठेंगे चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी भी एक दिया है और उसके अंदर तेल है पवित्रता। जितनी हमारे पास पवित्रता है कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, ऑटोमेटिकली अशरीरी की अनुभूति होती। इसलिए पवित्रता जरूरी है मनसा वाचा कर्मना, संबंध संपर्क में। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा, अब दिए के अंदर तेल भरा हुआ है लेकिन बीच में बाती नहीं है, और बाती तो खास सूत वाली बाती होती है, उसके अंदर तेल के अंदर रखते ही वो पूरा गीली हो जाती है। इसी तरह हमारे पास पवित्रता है लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते, स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, जितनी हमारी बुद्धि ऊपर बाबा के साथ लगी रहेगी, जितनी बुद्धि ऊपर उतना हमारे शरीर की पवित्रता कहां जाएगी, ऊपर चलेगी और ऊपर आत्मा तक पहुंचेगी और उससे दीपक जलेगा। जैसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा तक पवित्रता पहुंचाएंगे उतना अशरीरी विधेयी निरंतर रहेंगे। इसलिए हमारा ध्यान सदा ऊपर लगे रहे। लेकिन माया क्या करते हैं, बुद्धि को इधर उधर लगाते हैं, किसी व्यक्ति के तरफ, वस्तु के तरफ। जब बुद्धि उधर चली जाएगी, पवित्रता नहीं पहुंचेगी तो ध्येयभान आता है। इसलिए पवित्रता के द्वारा हमें अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है। चौथी धारणा है चार सब्जेक्ट, जो बाबा ने ये चार सब्जेक्ट रखे हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ये चार सब्जेक्ट के ऊपर रोज हमें अपने दिनचर्या में क्या करना है, अटेंशन देना है। हमारा ज्ञान भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, धारणा भी जरूरी है और साथ में सेवा भी जरूरी है। जिन्होंने चार सब्जेक्ट को परफेक्ट किया वो अशरीरी विधेयी अवस्था में रहता है। कई कहते हम रोज मुरली सुनते, कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप रोज मुरली सुनते हैं तो भान क्या चाहिए, अशरीरी विधेयी स्थिति आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब मुरली सुनने तक है। मुरली केवल सुनना नहीं है, मुरली सुन करके उस प्रमाण चलना है, उसका आचरण करना है, धारण करना है। जो मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप अशरीरी विधेय बन जाएगा। इसलिए ज्ञान केवल सुनना नहीं है लेकिन उसका मंथन मनन करके खुद उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। कई कहते हम रोज योग करते हैं लेकिन कभी भी अमृत वाला मिस नहीं करते, नुमा शाम का योग मिस नहीं करते, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर हम रोज योग करते हैं तो भी मेरी अशरीरी विधेय स्थिति नहीं रहती। इसका मतलब योग में मेरा शरीर बैठता है लेकिन मेरी मन बुद्धि कहीं भटकती। जिसकी सचमुच मन और बुद्धि बाबा के पास जाएगी वो चार्ज हो जाएगा और वो सारा दिन अशरीरी विधेय स्थिति में रहेगा। उसके कर्मों में भी आत्मिक स्थिति रहेगी। जो यथार्थ योग किया वो अशरीरी विधेय की अनुभूति कर सकता है। कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में चले पवित्रता की धारणा है, खान पान की धारणा है, जो भी ब्रह्मा कुमारी की सारी धारणाएं मेरे जीवन में है। अगर धारणा है तो भान क्या चाहिए? अशरीरी विधेय का। अगर इतनी धारणा करने के बाद भी मेरा अशरीरी का भान नहीं है वो धारणा केवल दिखावटी है। एक एक धारणा विधि पूर्वक। पहले जब भी बाप दादा से मिलने के लिए पार्टी को लाया जाता था मधुबन में तो दादियों की तरफ से पहले से डायरेक्शन जाता था, एक वर्ष वो पक्का अमृत वाला उसका किया है चार्ट, पवित्रता की धारणा का चार्ट, शुद्ध भोजन का चार्ट, अगर ये ठीक है तभी मधुबन में बाबा मिलन में लाते थे। क्योंकि ये धारणा से ही हमारी थोड़ी सी आत्मिक स्थिति बनती है। अगर हमारे अंदर धारणा नहीं आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। तो धारणा और साथ में 14 सब्जेक्ट आए सेवा। कई कहते हम जब से बीके बने खूब सेवाएं की, तन से मन से बहुत। अगर सेवाएं हमने बहुत की तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? अशरीरी विधेयी। क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती हैं और दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। अगर मैं सेवा करता हूं तो भी मेरी अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए थी, दिखावटी के लिए सेवा थी, असली सेवा नहीं थी। अगर सचमुच मैं सेवा निस्वार्थ से करता, दुआएं वाली सेवा करता तो मेरी अशरीरी स्थिति। ये चार सब्जेक्ट का भी रिजल्ट टोटल है अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति। ये चार सब्जेक्ट हमें पक्का करना है विधि पूर्वक। पहली धारणा बताई संकल्प को समर्थ चलाना पॉजिटिव, दूसरी बताई पवित्रता की धारणा विधि पूर्वक योग करना, तीसरी बताई पवित्रता की धारणा, चौथी बताई चार सब्जेक्ट विधि पूर्वक पक्का करना, पांचवी धारणा है अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, आत्मा के जो 7 गुण है कौन से? मुख्य गुण शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम। तो 7 गुण है, जितना उसका आप स्वरूप बनेंगे उस 7 गुणों को जितना अपने लाइफ में बढ़ाएंगे उतना आत्मिक स्थिति बनती है। जिसको ही बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे सत्व प्रधान बनो, ये 7 गुणों में सारी शक्तियां और गुण समाये हुए हैं। मैंने शुरू शुरू में जब ज्ञान में आया था मैंने क्या क्या, सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो एक दिन क्या क्या शांत स्वरूप का अभ्यास, दूसरे दिन शक्ति स्वरूप का अभ्यास, तीसरे दिन आनंद स्वरूप का अभ्यास। मैं सारा दिन एक एक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करता था। इससे धीरे धीरे मुझे आत्मिक स्थिति की अनुभूति करने के लिए बहुत मदद मिली। ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे उतना अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे। जैसे जब अव्यक्त महीना आता है जनवरी महीना तो सभी लोग हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहने की कोशिश करते हैं। एक साइलेंस में रहने से सहज हम विधेयी बन जाते हैं। एक गुणों को भी बढ़ाते तो भी, इसलिए 7 गुणों का रोज अभ्यास करना, इससे हम अशरीरी विधेयी की अनुभूति कर सकेंगे। छठी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है उसके लिए निरहंकारी होकर के चलने की जरूरत है। निरहंकारी, अगर मेरे अंदर कोई कलाओं का, विशेषता का, कोई गुण का, शक्ति का, कोई बात का अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी आत्मिक भान में नहीं रह सकता। दो प्रकार के मय है, एक असली मय, दूसरे नकली मय। नकली मय कौन से? मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मधुबन निवासी हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं कई प्रकार के मयपन के मुकोटे हैं। और जो इस मयपन के मुकोटे को पहन के चलता है और उस प्रमाण सामने वालों ने किसी ने पूछा नहीं, रिगार्ड नहीं दिया, तुरंत फीलिंग आती है, अरे मुझे उन्होंने पूछा ही नहीं, मुझे उन्होंने सम्मान नहीं किया। ये पूछ पूछ की पूछ। और जो इस मयपन के अभिमान अपमान में रहता है वो निराकारी स्वरूप में अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए असली मुकुटा पहन के चलना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो जितना निराहंकारी रहेंगे, निराकारी स्थिति, अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, इसके अंदर मेरे, इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई ईगो है, अभिमान है। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। और अभिमान है उसकी निशाने फीलिंग होना, अपमान फीलिंग करना। अभिमान वालों को अपमान होता है, जहां अपमान होता है उसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं। अब जिससे संकल्प चलते हैं वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं टिक सकता, अशरीरी विधेय नहीं बन सकता। इसलिए निरहंकारी बनना। और लास्ट की धारणा है, अगर मुझे अशरीरी विधेय का अभ्यास करना है उसके लिए सभी इंद्रियों को हमें क्या करना है, रोज स्वराज्य अधिकारी का चार्ट रखना है। कौन सी इंद्रिया मेरा कहना नहीं मानती, क्योंकि इंद्रिया क्या करते, देह भान में लाती है। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी। ब्रह्मा बाबा रोज अपना कर्मेंद्रिय का चार्ट चेक करते थे। तो इसी तरह हमें भी अशरीरी बनना है, विधेय बनना है, रोज चेक करना है कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है। जब आंखें गलत देख लेते हैं देहबान मिलाती है, कान ने गलत सुन लिया देहबान मिलाती है। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगेंस एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चले। क्या आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती हैं, योग में बैठते ही बंद हो जाते हैं। कोई मोबाइल की चीजें देखते हैं तो बंद नहीं होती, टकटक करके देखती रहती। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई व्यर्स सुनाता है और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। तो सारा दिन हमें चेक करना है कौन सी कर्मेंद्रिय ने अपनी मन मर्जी की, कौन सी कर्मेंद्रिय श्रीमत का उल्लंघन किया, उनको शिक्षा देना, सजा देना। जब हर कर्मेंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तब जाकर के हम आत्मा के भान में अशरीरी बन सकते हैं। क्योंकि जो सारा दिन देखते हैं सुनते हैं, जैसे योग में बैठते हैं वही बातें याद आती हैं, तो परमधाम में जाएंगी कैसे? जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में तब शांति से बैठते हैं, उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में तब शांति में बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। अगर थोड़ा आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। तो अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए, निराकारी की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना है, कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। रोज अमृत वेले के बाद सभी कर्मेंद्रिय को डायरेक्शन देना है, उनसे बातें करनी है। और उसके बाद रात को सोने से पहले क्या करना है, चेक करना है कौन सी कर्मेंद्रियों ने श्रीमत का उल्लंघन किया और उसको शिक्षा देना, सजा देना, और तब जाकर के हम अशरीरी बन सकेंगे, विधेयी बन सकेंगे। इसलिए हमें ये मुख्य जो है जिसके लिए हम आए हैं, ये पहला हमारा लेसन है, और इस पहले लेसन को ही पक्का करने के लिए इतना हम स्टडी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था से ही हमारे में परिवर्तन आएगा, आत्मा के संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति हमें बनाना है, और इसी के द्वारा हमें हमारे अंदर शक्तियों को जागृत करना है, अपने देवताओं के संस्कारों को जागृत करना है। जो इस अवस्था में रहता है उसको सत्ययुग में जाने का भी दिल नहीं करेगा, उसको ये जीवन बहुत आनंददायक अनुभव होगा, क्योंकि इस संगम युग का ये जीवन है हीरे तुल्य, और सत्ययुग का जीवन कैसा है, गोल्डन, गोल्डन से भी हीरा क्या होता है, वैल्यूबल होता है, लेकिन वो अनुभव करने के लिए ये हमारी अवस्था चाहिए, अशरीरी विधेयी, और फिर हमें ये विघ्न, समस्या, प्रॉब्लम, इस अवस्था में रहने वालों को ये कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये विघ्न समस्या आती भी है, अशरीरी स्थिति में रहने वाला, विधेयी स्थिति में रहने वाला उस विघ्नों को भी आगे बढ़ने का साधन बना करके और आगे जाता है। इसलिए ये जो रोज बाबा हमें मुरली में कहता है, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, यही हमें मूल बात में लगे रहना है और इसका अनुभव करना है, और इसी आत्मा अनुभव के सामने, आत्मा अनुभव जिसको होगा उसको परमात्मा अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा, और इससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो निरंतर हमें क्या करना है, इस स्वरूप में टिकना है, और जितना निरंतर इस स्वरूप में टिकेंगे, हमारे सारे खजाने और शक्तियां इसकी बचत हो जाएगी, वाइब्रेशन अच्छा फैलेगा, बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। और इसके लिए जो बातें बताई, एक तो पहली बात बताई कौन सी, अगर इस अवस्था का अनुभव करना है हमें व्यर्थ संकल्प के अग के फूल को क्या करना है, व्यर्थ सोचना ही नहीं, उसको बाबा के ऊपर देना है। और बाबा ने यह भी कहा कि अगर आता है तो बाबा को कहो कि एक कृपालु बाबा, दयालु बाबा, जो आपने मुझे, मैंने आपको दी थी वो चीज मेरे पास आई, आज बहुत संकल्प व्यर्थ चले, तो बाबा क्या करेगा, आपको मदद करेगा और उसे मुक्त कराएगा। तो हमें व्यर्थ संकल्प से बिल्कुल मुक्त होकर के रहना है। बाबा ने कहा 18 जनवरी में भी इसके लिए 2 महीने का होमवर्क दिया था, और पूरा इस साल के लिए भी कारण का निवारण करके, समस्या का समाधान करके संकल्प कम चलाने का पुरुषार्थ। दूसरी बात कौन सी बताई, याद के तरफ ध्यान देना है। तीसरी बताई पवित्रता की धारणा। चौथी कौन सी बताई, 4 सब्जेक्ट उसको रोज अपने दिनचर्या में पक्का करना। पांचवी कौन सी बताई, 7 स्वरूपों के अभ्यास। उसके बाद बताई थी, कौन सी बताई थी, कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ, रोज अपना चार्ट चेक करना। अगर ये कुछ बातें भी हम करेंगे तो भी हम इस आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें बहुत हेल्प मिलेगी, और ये अभ्यास हमें करना है, और ये रेडी, क्योंकि देख रहे हैं अचानक कुछ भी हो सकता है, तो हमें एवर रेडी होकर के रहना है। एवर रेडी मतलब हर पल अशरीरी विधेय अवस्था में, जैसे जिस घर में लाइट चालू रहती है वहां भूत नहीं रहता, इसी तरह इस शरीर में आत्मा का बान, अशरीरी विधेय स्थिति का लाइट है, तो कोई भी विकार का भूत इसमें नहीं रहेगा, विकारों का अंश वंश भी खत्म हो जाएगा। तो ये ही हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति।
वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले, पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले, ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता, खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता, मानव से वो देव बना, मानव से वो देव बना, धरती पर स्वर्ग सजाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
ओम शांति।